सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
ओम शांति। प्राय ऐसा देखने में मिलता है जो बहुत बड़े डॉक्टर्स होते हैं उनका व्यस्ततम जीवन होता तो अक्सर करके कह देते हैं कि बहन जी भाई जी हम तो नहीं आ सकते। कारण क्या है? हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। योग ध्यान कैसे करें? इसके लिए तो समय ही नहीं बचता। या तो हम पेशेंट्स देख लें या ज्ञान योग कर लें। इस प्रकार के जवाब मिलते हैं। और बाबा ने ऐसे ही व्यस्ततम जीवन जीने वाले अपने लाल को चुना, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को, जो ये कहते हैं योग के माध्यम से सब कुछ हो जाता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। आप सभी जानते होंगे डॉक्टर सतीश गुप्ता को। जानते हैं सब? हाथ खड़ा करो। कितने कैट के कार्यक्रम चलाते हैं जो कहते हैं योग के माध्यम से हमारे अंदर के सारी आर्टरीज खुल जाती हैं और सब सहज हो जाता है। लोग बोलते हैं हार्ट प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम, और भाई सब कहते हैं ये दिल ही बाबा को दे दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हम सुनेंगे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से स्वराज्य अधिकारी कैसे बने।
ओम शांति। स्वराज्य अधिकारी कहते ना, बाबा कहते स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य राज्य अधिकारी। जो इस समय संगम पर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं वो भविष्य में क्या बनते हैं? भविष्य में महाराजा महारानी बनते हैं ना। आज की मुरली में भी था ना, महाराजा महारानी बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तो स्वराज्य का अर्थ क्या है? स्वराज्य मीन्स, स्व मीन्स आत्मा। आत्मा का राज्य किस पर होता है? हमारी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां ना, मन बुद्धि संस्कार, अर्थात तीनों ही हमारे वश में रहते हैं। वहां पर मन भी हमारे वश में होता है, बुद्धि भी हमारे वश में होती है, और संस्कार, संस्कार माने हमारी आदतें, हैबिट्स भी हमारे वश में होते हैं। और पांचों कर्मेंद्रियां, आंख भी हमारे वश में होती है, नाक भी हमारे वश में, कान भी हमारे वश में, मुख भी हमारे वश में, और हमारे ऊपर की स्किन और अंदर की स्किन भी। जैसे ऊपर की स्किन है ना हमारी सेंसेशन, जो हमारी सेंस करते हैं ना, हम सेंस करते हैं, और एक अंदर भी स्किन है, मुंह में टेस्ट है, ये भी एक स्किन है ना। ये अंदर की स्किन है, सांस की नाली के अंदर है, फेफड़ों की नाली में, पेट की नाली में है, आर्टरीज की नालियों में जो स्किन होती है उसे हम एंडोथेलियम कहते हैं, वो भी एक स्किन है ना। पांचों कर्मेंद्रियां और आठों अंग है ना, शरीर हमारा आठ अंग से बना हुआ है, लगभग 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है। तो पूरी 80,000 अरब कोशिकाएं भी हमारे वश में रहती है, राइट? तो स्वराज्य अधिकारी माना, स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य मन बुद्धि संस्कार पर, पांचों कर्मेंद्रियों पर और पूरे शरीर पर रहता है। ये है स्वराज्य। और स्वराज्य अधिकारी हमें कब बनना है? सत्ययुग में बनना है कि अभी बनना है? अभी बनना है। तो आत्मा के पास इतनी शक्ति हो, आत्मा के पास कौन सी शक्ति है, क्या उस कौन सी एनर्जी आत्मा के पास है? आत्मा के पास सात एनर्जी होती है ना। आत्मा के पास सात उसके अपने गुण है, निजी गुण है, या निजी ऊर्जा कह सकते हैं ना, आध्यात्मिक ऊर्जा कह सकते हैं आत्मा के पास है। पहली तो ज्ञान है। ज्ञान माना सत्य की समझ, ज्ञान माना समझ है ना। आत्मा के पास वो समझ है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, या सरल संबंध कह सकते हैं, और डी फॉर ड्रामा, ये संसार रूपी नाटक क्या है, इसका राज क्या है, उससे इस बात की बहुत गहरी समझ होती है सत्युग में। सत्युग नहीं, अभी अभी हमको ये बाबा दे रहे हैं ना, तो ये ज्ञान की मतलब पूरी समझ सत्य है। ये चारों बातें सत्य हैं। आत्मा सत्य है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य माना, सत्य के अंदर दो क्वालिटीज होती हैं। पहली, सत्य कभी मरता नहीं है, अविनाशी होता है, एटर्नल। सत्य कभी मरता नहीं, सदा ही है, आज भी है, कल भी था, आज आगे भी रहेगा, सदा रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता। दूसरा, सत्य कभी बदलता नहीं है। तो हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है जो सत्य है? एक इंसान में क्या सत्य है बताइए? शरीर तो बदल रहा है, रोज पैदा होता है, मर जाता है, और शरीर बदलता भी रहता है। हमारा जो रोल है, हम माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, जो भी हमारा रोल है, हम समाज में बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी हमारा रोल है वो भी बदलता रहता है ना? तो वो तो हम नहीं है, ये तो लेबल है। तो मैं जो हूँ आत्मा, मैं शरीर में आने से पहले भी थी, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा थी, आज शरीर में हूँ, आज भी ऐसी अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, और शरीर छोड़ने के बाद भी रहूंगी ना? और सदा ही ऐसी रहूंगी। सत्युग में भी ऐसा ही अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु होंगे, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और कलयुग में भी, है ना? चार युगों में ऐसे ही रहेंगे, और परम धाम में भी ऐसे रहेंगे, सदा ही ऐसे रहेंगे। नहीं, तो आत्मा सत्य है, दूसरा परमात्मा सत्य है, ठीक है, तीसरा आत्मा और परमात्मा के संबंध सत्य है। ये शरीर छूटा, संबंध बदल जाते हैं, नहीं? ये शरीर छूटने की बात तो क्या, शरीर में रहते रहते भी संबंध बदल जाते हैं, नहीं बदलते हैं? तो संबंध, अच्छा, तो वो संबंध अलग काल के हैं, किंतु इससे संबंध, बाबा से हमारा संबंध, आत्मा का संबंध सदा काल के हैं। और खाली एक संबंध नहीं है, सभी संबंध है, और संसार रूपी जो ड्रामा है ये भी क्या है, सत्य है। इसमें कर्म सत्य है, कोई भी हमारा किया हुआ कर्म माफ नहीं होता है। आज की मुरली में था ना, जो हमारे विकर्म कितने किए हुए, हम कितने कर्मों का बोझा है, विकर्मों का बोझा हमारे सिर पर है, वो याद से ही कटेगा, योग बल से ही कटेगा, और कोई रास्ता नहीं कटने का ना। तो बाबा ने ये बात कितना क्लियर समझाया है ना। तो इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा क्या है इस ड्रामा का, क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है ना, सुप्रीम जस्टिस, सबसे बड़ा न्यायाधीश, जज भी है ना। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ है, कोई आपस में पति पत्नी क्यों बनते हैं, हम किसी के घर में जन्म क्यों लेते हैं, माता पिता हमारे किसी के गरीब हैं, किसी के मिडिल क्लास हैं, किसी के झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, किसी के बहुत अमीर होते हैं, किसी के अनपढ़ होते हैं, किसी के पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, और कर्मों के अनुसार नहीं है, खाली कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। हमेशा मैं कर्मों का हिसाब किताब, ये बाबा कहता है बड़ा क्लियरली, कर्मों का हिसाब किताब क्या है, क्या है कर्मों का हिसाब किताब? कर्मों का हिसाब किताब क्या है कि कर्म हमारे जो होते हैं, आप सपोज हमने, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसे मैं एग्जांपल कई बार सुनी भी होगी आपने शायद। तो अगर आपने 100 साल पहले किसी से 10 रुपए उधार लिया, तो 100 साल के बाद वो व्यक्ति जो इससे उधार लिया, वो आपका बच्चा बन, बेटा बन के आ गया, बेटी बन के आ गई, या पत्नी बन के आ गई, या पति बन के आ, माँ बाप बन के आ गए, तो क्या करेंगे वो? 10 रुपए उसको वापस करना पड़े, नहीं करना पड़े? और ब्याज कितना होगा उसका, हिसाब किताब कितना होगा, कितना होगा हिसाब किताब, है जी? आप कभी हिसाब लगा के देखना, नहीं तो मैंने एक बार लगाया था, आप सोच के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 5,98,00,000 रुपया होता है उसका ब्याज, 10 रुपए का ब्याज 100 साल का। आप सोचेंगे कैसे, है ना? मैं आपको बताता हूँ विधि। देखो 1917 से लेके 1947 तक 3 साल में पैसा डबल होता था, कितने साल में, 3 साल में। और फिर 1947 से लेके 1967 तक 4 साल में पैसा डबल होता था, 1967 से लेके और 1987 तक 5 साल में डबल होता था, और उसके बाद 87 से लेके अभी 2017 तक लगभग 7 साल में डबल, 7 से 8 साल में डबल होता है। तो 20 बार डबल कर दो 10-10 को ना, तो आप देखो कितना बन जाएगा ना, ठीक है? तो इतना ब्याज आपको देना पड़ता है ना। अगर आपने एक बार इंसल्ट की हो किसी की 100 साल पहले, तो कितनी इंसल्ट होगी आपकी, एक गाली दी होगी कितनी गाली मिलेंगी बताओ? तो कर्मों का हिस्सा आप देखते हैं ना, अपने घरों में देखते हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनके सुबह से लेकर शाम तक उनकी सेवा करते हो, उनके हिसाब से काम करते हो, तो भी बच्चे संतुष्ट होते हैं क्या? माताएं अपने पति की कितनी सेवा करती हैं, सारा खाना बनाएंगी, सब कुछ करेंगी, पति संतुष्ट होता है क्या? आप बताओ, आप अपनी पत्नी के लिए बहुत सारा काम करते हो, दिन रात काम करते हो, सब कुछ करते हो अपने घर के लिए, क्या पत्नी संतुष्ट होती है कभी? आपके बच्चे संतुष्ट होते हैं क्या? क्यों नहीं होते? क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है ना। वैसे भी कहते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, ऐसे गीता ना है ना, तो 100 पिछले जन्मों का हिसाब किताब है ना, वो पूरा तो करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है। सारी बीमारियों की जड़, सारे शरीर की मन की बीमारियां, डिप्रेशन होना, नींद ना आना, एंजाइटी होना, या फोबिया हो जाना, स्किजोफ्रेनिया हो जाना, जो भी मानसिक समस्याएं हैं, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाना, दमे की बीमारी हो जाना, माइग्रेन हो जाना, पेट की खराबी होना, एसिडिटी होना, कब्जी होना, कमर में दर्द होना, घुटने खराब हो जाना, है ना, और कौन कौन सी बीमारी है ना, स्किन की एलर्जी हो जाना, है ना, ये सारी सारी बीमारी की जड़ क्या है? हम यहां अटके हुए हैं कि मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। जो पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स, जो पास्ट भूतकाल में जो आपको बचपन में, छोटे 4-5 साल की उम्र में, 6 साल 10 साल 12 साल की उम्र में जो आपके माँ बाप ने कुछ गलत कर दिया, गलत हो गया आपके साथ, टीचर ने कुछ गलत कर दिया, किसी ने आपके साथ पार्शियलिटी कर दी, है ना, वही विचार हमारे मन में बार बार आते रहते हैं। पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स जिनको हम माफ नहीं कर पाते, कई बार अपने आप को माफ नहीं कर पाते, कई बार दूसरों को माफ नहीं कर पाते, है ना, उसी वही जड़ है। वही छोटे बचपन में हमारे एंडोथीलियम, हार्ट की आर्टरी के अंदर जो दीवार होती है ना, जिसको एंडोथीलियम कहते हैं, वो डैमेज हो जाती है उन विचारों से, और वहीं पर कोलेस्ट्रॉल चिपकता जाता है धीरे धीरे अंदर जाते 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 जाते, किसको 20 साल में, किसको 30 साल में, किसको 40 साल में आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। ऐसे दमे की बीमारी कहो, पेट में अल्सर कहो, है ना, जो भी बीमारियां हैं, रीढ़ की हड्डी खराब होती, किसको कुछ होता, किसको कैंसर हो जाता, ये सारी की सारी बीमारी जितनी भी हैं हमारे ही ये बचपन की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स का परिणाम है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास एक भगोना है, भगोना समझते हैं ना, बर्तन, उसमें 1 लीटर दूध है ना, दूध अभी लाए, उसमें एक मक्खी गिर गई, तो क्या नजर आएगी आपको? उसमें दूध नजर आएगा, मक्खी नजर आएगी? ऐसे ही बचपन से लेके हमारे तक, हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि बहुत खराब, सब कुछ खराब हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, माँ बाप ने हमारी बहुत पालना की है, हमको बहुत पढ़ाया है, बहुत प्यार किया है, बहुत हमारे अपने अपने मुख मतलब अपने अभी अपना हिस्सा भी हमको देके बड़ा किया है ना, किंतु हमें क्या याद रहता है? वो याद रहता है क्या याद रहता है? मेरी मम्मी ने मेरे को ये बोला, तू निकम्मा है ना, तू बेकार है, क्या याद रहता है? मेरी मम्मी छोटा था ना, तब भी मेरे पिताजी ने मेरे को थप्पड़ लगाया था, वो थप्पड़ याद रहता है ना, या कोई खराब बात कह देते ना, माता पिता कह देते हैं, कोई भाई बहन या टीचर कह, वो हमें याद रहती, उनकी पालना हमें याद रहती है क्या? तो ये साइंस में देखने में आया कि 90% जो विचार है या तो पास्ट से आ रहे हैं या तो भविष्य से, इनसिक्योरिटी भविष्य में क्या होगा, सिर्फ 10% विचार ही प्रेजेंट से आते हैं, तो 90% विचार हमारे वहां से आ रहे हैं। अब मान लीजिए आज कहते हैं 30 विचार 1 मिनट में आते हैं हमें, ऐसा बोलते हैं, 1 मिनट में 30 विचार हमें आ रहे होते हैं, तो 90% विचार कितने हो गए? 27 विचार कहां से आ रहे हैं? या तो पास्ट से आ रहे हैं या तो भविष्य से आ रहे हैं, तो वर्तमान से कितने आ रहे हैं? 3। तो 30 विचार आना अशांति है और 3 विचार आना माना शांति है, है ना? तो राजयोग मेडिटेशन क्या है? बाबा परमात्मा शिव आए हैं हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाने, बाबा हमें राजयोग सिखाने आए ना, तो राजयोग मेडिटेशन क्या है? राजयोग मेडिटेशन से हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, मतलब आत्मा के पास इतनी सातों एनर्जी भर जाती है, इतनी शक्ति भर जाती है, सातों जो एनर्जी कम हो गई है आत्मा में, सात शब्द से ही सतो प्रधान शब्द आया है, सतो प्रधान, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, सत्व प्रधान, जब आत्मा सत्युग में सत्व प्रधान है तो आत्मा सातों गुणों से भरपूर है। रजो प्रधान, रजो माना श्याम, रजो माना श्याम, राइट, मतलब वो एनर्जी जो फुल मून थी या सूरज के समान थी, फुल थी, अब शाम होते होते आधी से कम हो गई, उसी रजो का 50% से कम हो गई, और तमोमाना अंधेरा, सातों एनर्जी अब ना के बराबर है। इस समय हमारे पास सातों एनर्जी ना के बराबर, इसे हम तमो प्रधान पतित बन गए, है ना। अब बाबा आके हमें राजयोग सिखाते हैं, ठीक है। तो राजयोग से क्या होगा, सतो पर हमारे अंदर सातों एनर्जी भर जाएंगी। तो बाबा क्या सबसे पहली बात क्या देते हैं हमें, पहली बात क्या देते हैं हमें, ज्ञान देते हैं। बाबा पहले कौन है, ज्ञान का सागर है, फिर पतित पावन है, मतलब ज्ञान देकर के हमें पावन मनाते हैं, राइट। तो राजयोग क्या है, राजयोग की परिभाषा क्या है, राजयोग मेडिटेशन की परिभाषा क्या है, राजयोग मेडिटेशन क्या है, बीइंग द ट्रूथ। इंग्लिश में कहूं तो मैं बीइंग द ट्रूथ, सत्य बनना ही राजयोग मेडिटेशन, लिविंग द ट्रूथ, सत्य जीना, सत्य को जीना ही राजयोग मेडिटेशन, और रियलाइजिंग द ट्रूथ, सत्य को अनुभव करते ही रहना ही राजयोग मेडिटेशन। और शिव बाबा सत्य है, वो हमको सत्य ज्ञान सुनाते हैं, राइट। और ज्ञान का सार क्या है, ज्ञान सार रूप में क्या है, ज्ञान माने समझ, ज्ञान सत्य की समझ। तो ज्ञान सार रूप में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा का संबंध और ड्रामा, इसको हम छोटे रूप में कहें तो ए बी सी डी, है ना। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन मतलब संबंध, और डी फॉर ड्रामा। तो मैं सार रूप में कह सकता हूं ज्ञान राजयोग मेडिटेशन क्या है, ए बी सी डी को क्या करना, चलते फिरते रियलाइज करते रहना, क्या करते रहना, चलते फिरते उठते बैठ, आज की मुरली में था ना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जितना हो सके, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, राइट। तो हमें चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास रहना चाहिए, मैं कौन हूं, है ना, ये फील होता रहना चाहिए, ये आधा घंटा सुबह शाम होना चाहिए। राजयोग का मेडिटेशन आधा घंटा सुबह शाम करना चाहिए, हाँ नहीं, हम सांस कितने देर लेते हैं, आधा घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह लेते हैं आधा घंटा शाम, बाकी सारा दिन तो सांस लेते नहीं, लेते हैं क्या। तो ये राजयोग का मेडिटेशन हमारा श्वास है, श्वासो श्वास, है ना। एक बार बड़ी दादी थी ना, दादी प्रकाश मणि जी थे ना, तो दादी के पास मैं रोज जाता था सुबह। तो दादी ने एक दिन मुझे, मैं गया मुरली के बाद, तो दादी को, दादी ने जैसे जाके बैठा, दादी ने कहा गुप्ता जी अष्टाध्यायी कौन बनेंगे, मैंने कहा दादी जी आप बनेंगे। तो दादी कहती पर उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने कहा दादी आप बताओ ना, कहते आप तो मुरलियां बहुत पढ़ते हो आपको भी पता होगा ना, तो मैंने कहा दादी मुझे नहीं पता आप बताइए। तो दादी ने कहा जो श्वासो श्वास बाबा को और बाबा की मुरली को याद करते हैं, उनको बाबा की बाबा और बाबा की मुरली याद रहती है, वो अष्टतन बनते हैं, ठीक है। एक दिन में कितने श्वास लेते हैं हम, दिन में लगभग 16 घंटा होते हैं ना, 16 घंटा हम दिन में लगभग 14 के हिसाब से श्वास लेते हैं, 14 एक मिनट में, है ना, और रात को लगभग 10 लेते हैं एक मिनट में। अगर सारा आप काउंट करेंगे ना, मल्टीप्लाई करके देखना, हम 16,000 सांस लेते हैं लगभग एक दिन में, ठीक है। तो जो 16,000 जिनको बाबा, 16,000 बार जिनको बाबा याद आता है एक दिन में, है ना, आता है आपको इतनी बार याद, और बाबा की मुरली याद आती है, वो अष्टतन बनते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा को तो था ही, मम्मा को तो हर समय था ही, दादी को देखो, दादी को भी हर समय क्या याद रहता था, बाबा और मुरली, बाबा जब देखो आप, अभी भी दादी जानकी को देखो आप, जब देखो, जब भी दादी के पास जाओ, मुरली की उसी दिन की मुरली को ना कोई बात बताएंगे, कोई ना कोई बात बोलेंगे, है ना, उनके मुंह से निकलेगा बाबा बाबा, बस हर समय बाबा बाबा निकलता रहता है, नहीं होता है। तो अष्टतन बनेंगे ना, तो अष्टतन बनना है आपको, जिनको बनना हाथ उठाओ, सबने हाथ उठा दिया। तो आप श्वास श्वास याद करते हैं बाबा को, उसका पुरुषार्थ है ना, उसकी कीमत है ना, ऐसे थोड़ी ना अष्टतन बन जाएंगे। आपको कोई चीज खरीदनी है, एक मर्सिडीज खरीदनी है, जेब में आपके 500 रुपए भी नहीं है, तो मर्सिडीज खरीदोगे क्या, तो इतना 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 अभ्यास करोगे, हर श्वास में बाबा याद रहे, है ना, हर श्वासो श्वास बाबा याद आए और बाबा की मुरली याद आए। फिर दादी ने कहा अच्छा विजय रतन कौन बनेंगे, मतलब 108 की माला में कौन आएंगे, मैंने कहा दादी आप बताओ। तो दादी कहती है देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, मैंने कहा दादी 24 घंटे होते हैं। तो कहते जो कम से कम, जो कम से कम दिन में, सारे दिन में 100 बार बाबा को याद करे, कम से कम आठ तो बन गए ना, उसके बाद 100 बचे ना, कम से कम 100 बार बाबा को याद करे, और कम से कम मतलब 100 बार मुरली के पॉइंट उसको याद आए। आज की मुरली सुनी ना, अंदर मुरली क्या होनी चाहिए, अंदर मुरली बजनी चाहिए ना, एक बार ध्यान से सुन ली, याद है मुरली आज की, बाबा ने क्या कहा था मीठे बच्चे आज क्या था आज का वरदान क्या था हैं जी, यथार्थ पुरुषार्थ की विधि से। बहुत अच्छा, बहुत आपको याद है, इंदौर वाले सब पास है, वेरी गुड। मतलब अंदर से बजनी चाहिए, बार बार याद आनी, बार बार याद आनी चाहिए, बार बार याद आनी चाहिए, बार बार याद आनी चाहिए। कभी स्लोगन, कभी वरदान, कभी कुछ, कभी गीत। गीत कौन सा था मुझ मुरली में हा? माता हो माता तू है सबकी भाग्य विधाता ना, तो ये बार बार अस्तर से बजना चाहिए ना, अंदर से बजना चाहिए बार बार। तो ऐसे मतलब जिसको इतनी बार याद आए ना, मतलब घंटे में 6 बार, 16 घंटे हो ना, 16 घंटे में, घंटे में 6 बार तो 96 हो गए ना सारा दिन, तो ऐसे होना चाहिए। फिर अगर जो 16,000 में कौन आएंगे, 16,000 की माला भी होती है ना, उसमें कौन आएगा, जो दिन में कम से कम 8 बार मुरली रिवाइज करता हो, कितनी बार, 8 बार है ना। और जो फिर 9 लाख में कौन आएगा, 9 लाख भी फर्स्ट क्लास पर जाए ना सत्यु की, उसमें कौन आएगा, जो देखो ये मुरली में भी है, बाबा की मुरली में आया था, अमृत वेला के लिए आया था, मुरली के लिए भी आया था, जो समय पर अमृत वेला करे, 4 बजे ना, 4 बजे अमृत वेला करे ना, उसमें था जितने घंटे लेट उतने जन्म लेट सत्युग में। ऐसे बाबा की मुरली 7 बजे शुरू होती है, जो मुरली सारा काम छोड़ के टॉप प्रायोरिटी बाबा की मुरली को देते हैं वो सत्युग का पहले जन्म में आएंगे। क्लास में मुरली, घर में नहीं, मोबाइल पे नहीं, टीवी पे नहीं, मतलब जो सेंटर में आके बैठ के मुरली सुनते हैं सारे काम छोड़ के भी, तो वो बाबा की, जितने घंटे लेट उतने जन्म लेट। 7 की बजे 8 बजे आए तो, और 11 बजे आए तो 4 घंटे लेट है ना, मतलब 4 जन्म लेट है ना। तो हमको ये पुरुषार्थ करना, कुछ भी करो, धरती इधर से उधर हो जाए, अपना खाना सुबह सुबह 4 बजे उठे, आधा घंटा योग किया, जल्दी नहा धो के तैयार हो, खाना बनाया, बच्चों को खाना दिया, रखा, खा लेना आप अपने आप है ना। मैं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सेंटर पे, हम लोग ऐसे करते थे हम लोग, मुझे तो मेडिकल कॉलेज में जाना होता था है ना, जब मैं MD कर रहा था उस समय की बात है। तो हम लोग 4 बजे उठ के मेडिटेशन करके खाना वाना बनाते थे, बच्चे को स्कूल छोड़ते थे, और स्कूल छोड़ के पुणे साथ स्कूल छोड़ा, सेंटर पे गए, सेंटर पे 8 बजे तक मुरली सुनी, मुरली सुन के घर आके नाश्ता बना होता था, बच्चे पाती खाई और 8:30 अस्पताल पहुंच गए। सबसे पहले मैं ही पहुंचता था हॉस्पिटल में, ये नहीं कि लेट पहुंचूंगा, आज मैं लेट जरूर आया हूं किंतु वैसे लेट नहीं पहुंचा है ना, सुना आपने। तो मतलब ये लगन, और मेरा एक नियम था कि नाश्ता करेंगे नहीं जब तक हम मुरली नहीं सुनेंगे, इसलिए मेरी मुरली कभी आज तक मिस नहीं हुई है ना। जब तक मुरली नहीं सुनेंगे हम मुंह में नाश्ता नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, पहले आत्मा का भोजन मिलेगा, मुरली आत्मा का भोजन है, फिर हम नाश्ता करेंगे, कुछ भी खाएंगे मुंह में उसके बाद डालेंगे। आप भी, मैं कर हाथ नहीं उठवाता हूं, पर आप भी नियम बना लो है ना, क्योंकि मुरली ही साधन है, मुरली में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो मुरली में ABCD होता है, ABCD के अलावा EF नहीं होता है, होता है क्या, आत्मा का परिचय होता है, परमात्मा का परिचय होता है, आत्मा परमात्मा का संबंध, बाप टीचर सतगुरु, कभी बंधु सखा के बारे में, कभी साजन के बारे में भी होता है, कभी सतगुरु, कभी अलग अलग, कभी सर्जन के बारे में बाबा कहते हैं बाबा अविनाशी सर्जन है, कभी बच्चे के बारे में बाबा तुम्हारा बच्चा भी है ना, उसे अपना वारिस बना लो, बलिहार जाओ है ना, और फिर ड्रामा का आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है। यही तो 4 बातें होती नहीं होती, यही होती ना, बाबा डिफरेंट डिफरेंट तरह से, रमणीक तरीके से बच्चों को समझाने के हिसाब से, कभी किसी पॉइंट को, कभी किसी पॉइंट को, कभी किसी पॉइंट को गहराई से बताता है। तो ये जो बाबा की मुरली है, इसी का मनन चिंतन मंथन सिमरण जितना करते जाओ, जितना मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाओ, मनन रिवाइज करो, चिंतन माना गहराई में जाओ, मंथन माना और घोटो ना, जैसे होता ना हमें, जैसे हम खाना खाते ना, खाना खाने के बाद पचता है ना, खाना पचता है, और पचने के बाद उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक ब्रेक करना पड़ता है, हमारे जो पेट में एंजाइम्स होते हैं उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक करते हैं। जब हमने रोटी खाई, रोटी में ग्लूकोज, उसके एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज है, तो उसको इतना इतने इतना ब्रेक किया जाता है, इतना ब्रेक किया जाता है केमिकल्स के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा, कि लास्ट में ग्लूकोज बन जाता है। रोटी का ग्लूकोज सोचो आप, ग्लूकोज पाउडर देखा ना आपने, रोटी का इतना बॉडी इसको मेहनत करती है, पीसती है पीसती है पीसती है, क्या करा देती है इसका ग्लूकोज, फिर एब्जॉर्ब होता है ना। प्रोटीन का अमाइनो एसिड बना देती है, फैट का फैटी एसिड बना देती है ना, एक यूनिट बन जाती है, फिर जाके एब्जॉर्ब होती है। ऐसे नहीं कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी आंतें एब्जॉर्ब करती हैं। ऐसे ही हमें ज्ञान को इतना पीसो इतना पीसो, इतना मंथन करो, इतना मंथन क्या बन जाए, वो ग्लूकोज बन जाए, ठीक है ना। मतलब मंथन करना पड़ता है ना, चिंतन माना गहराई में जाना, और मंथन माना बहुत गहराई से पीसना, उसकी रग में रग मिल जाए, मतलब हमारी बॉडी से मिल जाए वो चीज, इतना गहराई में चले जाना। और इतना इतने गहराई में जाने के लिए बाबा आपसे मिल जाता है, जब आप मंथन करते हैं बाबा आपसे मिल जाता है, और फिर जब वो मक्खन जब वो निकल गया, मक्खन या ग्लूकोज बन गया, तो उसको फिर काम में लगाओ, कार्य करते हुए काम में लगाओ, जैसे मक्खन निकल आया उसको फिर कार्य करते करते काम में लगाओ, ठीक है। तो ये मनन चिंतन मंथन, अब मंथन करने के बाद जो जूस निकला उसको फिर कार्य करते समय कार्य में याद रहा तो हमने इसको यूज किया, तो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो गया, नया संस्कार बन गया। तो जितना हम इस तरह से मनन चिंतन मंथन करते जाते हैं, या आप ये कहो कि जितना हम एबीसीडी को रिवाइज करते या मुरली को रिवाइज करते बार बार, और उसको फिर अनुभव करते जाते एक एक पॉइंट को, है ना। मुरली का मुरली जो है ना, बाबा की मुरली जो, उसमें चार बातें हर महावाक्य में होती है। मेरे जिम में मुरली है, नहीं तो मैं आपको सुनाता हूं कैसे कैसे हम मनन चिंतन करते हैं। तो एक एक मुरली के पॉइंट की हम ना बहुत गहराई से, क्योंकि बाबा का हर मुरली का महावाक्य वो गुहिया है, गुहिया माना उसमें बहुत गहराई है, वो राजयुक्त है, उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, और वो उसमें बहुत सारे रहस्य हैं, मतलब बहुत सारे सस्पेंस हैं, और हर एक महावाक्य बहुत अमूल्य है। ये चार बातें मुरली की हर लाइन में होती हैं। मैं तो देखता हूं, मैं एक लाइन पढ़ता हूं, फिर पांच मिनट उसी पे वॉक करता हूं, दो तीन मिनट उस पर सोचता रहता हूं, फिर दूसरी लाइन पढ़ता हूं, फिर तीसरी लाइन पढ़ता हूं, तीन चार मिनट उसी पे एक चक्कर दो चक्कर लगाया, फिर उसको सोचते फिर अगली लाइन फिर अगली लाइन फिर अगली लाइन 45 मिनट में से बस सैर करता हूं। इतना मजा आता है उस मुरली को पढ़ के ना, जैसे पढ़ते हुए मंथन चिंतन करते हुए बहुत गहरा मजा आता है ना, उसकी वैल्यू पता लगती है। और 700 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम चलो 700 करोड़ छोड़ो, अपने बाबा के बच्चे कम से कम 15 लाख बच्चे हैं, 15 लाख बच्चों के लिए इसमें 15 लाख बच्चों के लिए सोल्यूशन है। वही चार पेज की मुरली, उसमें 15 लाख बच्चों के सोल्यूशन है, मतलब उसमें 15 लाख उसी लाइन का मतलब मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, इनके लिए कुछ और है, सबके लिए एक अलग अलग है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग है। तो कई बार हम समझते हैं ना, आज हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आया ये मनन चिंतन मंथन मुरली का ना, मनन चिंतन, तो आपके काम आएगा क्या वो मनन चिंतन? जिस भाई या बहन ने किया वो आपके काम आएगा? किसी ने खाना चबाया फिर क्या करोगे? उसका चबाया आप खाओगे क्या? आप अपना चबाओ ना, अपनी मुरली कहते अपनी घूट तो नशा चढ़े नहीं। आजकल बहन भाई व्हाट्सएप पे बहुत रहते हैं ना, लगे रहते व्हाट्सएप पे ना, नहीं लगे रहते, उसने मैसेज भेजा उसने मैसेज भेजा, मैं कभी व्हाट्सएप पे नहीं रहता हूं, मैं फेसबुक यूज नहीं करता हूं, मैं मोबाइल का सिर्फ लाल बटन हरा बटन यूज करता हूं, है ना। ये मोबाइल मेरा खराब हो गया, छोटे वाला था पहले मेरे मोबाइल, मेरे पास छोटा वाला लाल बटन हरे बटन वाला है ना, अभी मेरे को ये मेरा वो खराब हो गया तो मेरे को जबरदस्ती लेना पड़ा है ना, अभी जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को छोटे वाला मिल जाए वापस ना। ये पेन ने भी इसको जिम में डाल लो, यहाँ तो उसको जिम में भी डाल नहीं सकते हम, यहाँ रखना पड़ता है सामने ना। तो वो जो है हमें जो है ऐसा सिंपल बनना चाहिए है ना, कि हमारा सिर्फ बाबा की जो मुरली है ना, हमें किसी और से कनेक्शन रखना ही नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा से सुनना चाहिए है ना। एक बाबा की मुरली में था ना तीन चार दिन पहले, सिर्फ बाप से सुनो, किसी देहधारी से मत सुनो, क्योंकि बाबा जो कह रहे सत्य है। जितने भी मनुष्य हैं एवरीवन कुछ ना कुछ उसमें मिक्स कर देते हैं, द्वापर युग से हमें आदत पड़ी है क्या करने की, मिक्स करने की है ना। तभी गीता कैसी बन गई, रामायण महाभारत कैसे बन गए, सब कुछ गड़बड़ कर दिया ना, शास्त्र सारे गड़बड़ बन गए। अभी भी हम बाबा के बच्चे बनके कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की आदत खत्म नहीं, कहते चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं जाए, कुछ ना कुछ बीच में डाल देंगे है ना। तो ये जो है बाबा की जो बाबा की जो मुरली है ना, इसका ही गहराई से मनन चिंतन करो। जितना ही मुरली को मनन चिंतन करते जाएंगे उतना मन बुद्धि पवित्र बनती जाएगी। पवित्रता की परिभाषा क्या है? पवित्रता की परिभाषा क्या है? पवित्रता माना अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो, सत्य परमात्मा बाप के साथ कंबाइंड होकर फिर दूसरों को सत्य स्वरूप को देखना। देखो खाली आप, अगर आप अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे ना तो आप दूसरों के सत्य स्वरूप को देख नहीं पाओगे। बाप से कंबाइंड होकर बैठोगे ना तो हमें दिखाई देगा दूसरे का सत्य स्वरूप क्या है। वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, मेरा पति भी आत्मा, मेरी पत्नी भी आत्मा, मेरा बेटा भी आत्मा, मेरी बेटी भी आत्मा, मेरी माँ भी आत्मा, मेरा बाप भी आत्मा, मेरी बहन भी आत्मा, मेरा भाई भी आत्मा, मेरा नौकर भी आत्मा है, काम वाले भी आत्मा है। हर एक के प्रति उसको सत्य स्वरूप दिखाई देगा। कब कब दिखाई देगा? जब बाप से कंबाइंड होकर रहेंगे तो। अकेले अकेले दिखाई नहीं देगा, अकेले में माया आ जाएगी। ठीक है, बाप से कंबाइंड होकर देखो और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। ठीक है, और किसी से लगाव, किसी से भी लगाव, किसी भी देहधारी से लगाव, झुकाव, प्रभाव या टकराव, ये भी अपवित्रता है। किसी से लगाव ना हो। लगाव किससे होता है? अधिकतर संबंधों से होता है। झुकाव जो हमें अच्छे लगते हैं उनसे, उनकी तरफ झुकाव होता है। जिनको हम भले जानते ना हो कि जो फेमस होते हैं, है ना, उनकी खबर होगी, कोई बात होगी, उसकी तरफ झुकाव जाएगा, उनकी तरफ बुद्धि, मन बुद्धि जाएगा, है ना। प्रभाव जो अपने बड़े होते हैं ना, उनका उनके प्रभाव में, जो अच्छे लगते हैं ना उनके प्रभाव में आ जाते हैं। और टकराव जो हमारी मानते नहीं है, हमारे खिलाफ करते हैं, उनसे होता है। तो लगा, और जब भी योग में बैठेंगे आपको कौन याद आएगा? जिससे लगाव होगा वो भी याद आएगा, झुकाव वाला भी याद आएगा, कभी प्रभाव वाला याद आएगा, कभी टकराव वाला याद आएगा। तो योग लगा, तो लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव भी अपवित्रता है। ठीक है, मेरा लगाव हो तो किससे हो? सिर्फ बाबा से। झुकाव किसकी तरफ हो? बाबा की तरफ। और प्रभाव भी बाबा का, किसी देहधारी का प्रभाव, ना लौकिक का ना अलौकिक का मेरे पर होना चाहिए। और टकराव भी, टकराव तो किसी से ना हो। ठीक है, और तीसरी बात जो है ड्रामा। ड्रामा में, सृष्टि रूपी ड्रामा में क्या क्या हो रहा है? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ भी करे वो ड्रामा में एक्यूरेट कर रहा है। ड्रामा में गलत कुछ भी नहीं है, है ना। तो इसलिए इस क्या क्यों कैसे करना भी अपवित्रता है, क्योंकि उससे वैध संकल्प पैदा होते हैं। तो जितना आप एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, मुख्य नौ संबंधों के मैं बहुत बहुत अच्छी अनुभूति बाबा से रहनी चाहिए। मां के साथ का संबंध, बाप के साथ का संबंध, टीचर के साथ का संबंध, सतगुरु के साथ का संबंध, और बंधु, बंधु माना बड़े भाई का संबंध, सखा दोस्त का संबंध, और साजन सबसे प्यारा, मोस्ट बिलेवेड, है ना। आज की मुझे पता बाबा सबसे कितना प्यारा है, सबसे प्यारा है, तो मोस्ट बिलेवेड का संबंध। और फिर सर्जन, मेरा सर्जन है, वो डॉक्टर है, फिजिशियन, जो मर्जी कहो उसको, जो भी बीमारी है उसका इलाज डॉक्टर वो है ना, सुप्रीम सर्जन है। और फिर बच्चा, ये नौ संबंधों की अनुभूति बहुत गहरी होनी चाहिए, बहुत बहुत गहराई से इसकी अनुभूति होनी चाहिए, है ना। तो फिर डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हरा, मैंने ऑलरेडी बताया, जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। इसलिए जब भी कोई बात मन में आए, क्योंकि विचार आएगा मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, कभी उसकी याद आई, कभी उसकी याद आई, नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, अभ्यास करो बार बार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा, बाबा से कंबाइन होके जो हुआ अच्छा हुआ, और जो अब हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि बाबा अब हमारे साथ है, हर संबंध से हमारे साथ है, हर जगह हमारे साथ है, और हर समय हमारे साथ है। ठीक है, और जो होने वाला है, क्या होने वाला है आज शाम को, क्या होने वाला है? कई लोग कहते सत्युग में बहुत अच्छा होने वाला है, नहीं, मैं कहता हूं आज अभी, क्या आज शाम को क्या होने वाला है? बहुत अच्छा होने वाला है। कल क्या होने वाला है? उससे भी अच्छा। परसों उससे भी अच्छा, है ना। सत्युग में तो अच्छे से अच्छा होने वाला ही, प्रॉब्लम ही नहीं है ना। पर अभी भी हमारा अच्छा, क्योंकि अब बेसिकली अच्छा और बुरा क्या होता है? जैसे कर्म हम करते हैं वैसा फल मिलता है, जैसा बीज बोते हैं वैसा फल मिलता है ना। अब हम बीज कैसे बो रहे हैं? बाबा की श्रीमत पे बीज बो रहे हैं, हम योग भट्टी कर रहे हैं, हम बाबा को अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली कर रहे हैं, सारा दिन अटेंशन रखते हैं, तो अच्छा ही होगा। बुरा क्या होगा? अगर कोई बुरा भी होता उसमें भी कल्याण समाया है, ठीक है ना, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मुझे पेनिसिलिन की रिएक्शन हुई 91 में, तो मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो गया है ना, बाबा से मिलके आया पहली बार सूक्ष्म वतन में है ना, फिर मुझे हार्ट की बीमारी आई 96 में, तो उसके मुझे अनुभव हुआ कैसे बीमारी या राजयोग से बीमारी कैसे ठीक होती है, तो उससे फिर हार्ट के पेशेंट की सेवा हो सकी। अगर मुझे हार्ट की बीमारी ना आती तो मुझे पता ही नहीं लगता हार्ट की बीमारी की। ये शायद कैट प्रोजेक्ट जो हार्ट का प्रोग्राम बना इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ना आती, इतनी ताकत मुझे अंदर ना आती। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, अच्छी हुई कि बुरी हुई। हमारे पास दिलवाले आते हैं ना, दिलवाले 7 दिन का प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत, हमें हार्ट अटैक बहुत लेट आया है ना, 10 साल पहले आता तो हम इंसान बन जाते, पहले बन गए होते है ना, है ना। नहीं तो मतलब हार्ट अटैक आना कोई खराब बात है क्या, तो बहुत अच्छी बात है ना। दिलवाले बन जाते हैं ना, दिलवाले बन जाते तो उनका भाग्य बन जाता नहीं। तो ये कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छा ही होने वाला है ना। तो ये जितना ये होता जाएगा, जितना ये करते जाएंगे, उतना हमारी मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी। पवित्र माना हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर बाबा से कंबाइंड होकर दूसरे के सत्य स्वरूप को देखेंगे, सत्य स्वरूप में व्यवहार करेंगे और अपने आप ही लगाव खत्म हो जाएगा, अपने आप ही झुकाव खत्म हो जाएगा, हमारे अपने आप ही प्रभाव उसका रहेगा, टकराव सब खत्म और क्या क्यों कैसे की आदत खत्म हो जाएगी। पवित्रता से फिर शांति आती है। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं यहां पर, यह भी ध्यान रखना कि कभी भी हम कई बार ऐसे योग में बैठते हैं ना, योग में बैठ जाते हैं और फिर योग में बैठ के करते हैं, ऊपर से शिव बाबा से पवित्रता, बाबा पवित्रता का सागर है, मुझे पवित्रता आ रही है ना, शांति आ रही है। ऐसे शांति पवित्रता आती नहीं है, शांति किरणें आ रही हैं, पवित्रता किरणें आ रही हैं। बाबा ने हमें राजयोग सिखाया, ये पढ़ाई उसका जितना मनन चिंतन मंथन सिमरण करेंगे उतना हमारे मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी। पवित्रता मुझे बनानी है, ऊपर से आनी नहीं है, ठीक है। चंद्रकला बहन जी ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, पवित्रता मुझे बनानी है कि अपने ऊपर से आनी है? हाँ अपने अंदर से लानी ना। अब पवित्रता ऊपर से आ जाए, ऐसे खींच के आ जाए, तो फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। हाँ जी क्या कह रहे हैं? हाँ बैठ बैठ बैठ। देखो बाबा आशीर्वाद कृपा नहीं करते, बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है ना, जितना ध्यान से पढ़ोगे, जितना अटेंशन देके पढ़ोगे, जितना इसको याद रखोगे, चलते फिरते उठते बैठते याद रहेगी, उतना तुम्हारी मन बुद्धि पवित्र होती जाएगी, ठीक है। हाँ मैं अगर इसके लायक बन जाऊं तो मैं करंट खींच सकता हूं बाबा से, है ना, करंट खींचेंगे, जैसे बाबा करंट का सागर है ना, तो मैं खींच सकता हूं, जितनी मेरी आत्मा पवित्र बनती जाएगी बुद्धि, उतना ज्यादा करंट खींच सके, ठीक है। तो ये पवित्रता मुझे बनानी है, ऐसे ही जितना पवित्र रहे, अभी मुझे अपने आप बनाना पड़ा नहीं बनाना पड़ा, अपने सत्य स्वरूप में टिकना पड़ा नहीं टिकना पड़ा, बाबा से कंबाइंड होना पड़ा नहीं होना पड़ा, दूसरे के सत्य स्वरूप को देखना पड़ा और फिर सत्य स्वरूप में व्यवहार किया, तो इसे कहा पवित्रता है, ये अपने आप आ गई, करना पड़ा ना, ये मेहनत है, यही मेहनत है, इसे यही याद है, यही याद है, यही मेहनत है, ठीक है। और जब पवित्रता आ गई तो फिर क्या हुआ, शांति आई। शांति माना क्या, शांति माना अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो, पहले पहली बात तो ना पास्ट का चिंता ना भविष्य की चिंता। शांति माना क्या, ना पास्ट का चिंतन ना भविष्य की चिंता। हमने क्या बोला थोड़ी देर पहले, जो हुआ अच्छा हुआ, पास खत्म हो गया, और जो होने वाला है सबसे अच्छा होना, भविष्य खत्म हो गया, अभी क्या आ गए, वर्तमान में आ गए। वर्तमान में अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर, सत्य बाप से कंबाइंड होकर, फिर क्या करना, फिर सोचो, कुछ भी सोचना है, कब सोचो, हमेशा कंबाइंड होकर के सोचो। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे को बार बार ये बात याद आती है ना, कुछ भी करने से पहले मैं कंबाइंड होकर सोचता हूँ, फिर कभी कभी भूल जाता हूँ, फिर कभी याद आता है, नहीं बाबा से कंबाइंड होकर सोचूं। अकेला सोचा तो फिर तो माया ओवर पावर कर लेगी, क्योंकि अंदर जो भरा पड़ा है वो कचड़ा भरा पड़ा है ना, तरीसरे जन्म का पाप भरा पड़ा ना, वो ओवर पावर कर लेगा मुझको, कि तू बाबा से कंबाइंड हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, तब मैं ठीक सोच पाऊंगा, सत्य सोच पाऊंगा। सोचना कब है, कंबाइंड होकर सोचो, और कंबाइंड होकर देखो, किसी को भी देखो तो कैसे देखो, कंबाइंड होकर, किसी को भी देखना हो, चाहे बेटे को देखना हो, बेटी को, सेंटर में बाहर किसी को, साथी को, है ना, किसी को भी देखना है, कंबाइंड होकर देखो, ठीक है। पढ़ना हो तो क्या करें, कंबाइंड होकर पढ़ो, ठीक है। सुनना हो तो क्या करें, कोई अपनी बात सुनाने आया तो क्या करें, अकेले सुनोगे तो क्या हो जाएगा, फंस जाओगे, है ना, कहीं ना कहीं माया आ जाएगी। कंबाइंड होके सुनो। खाना हो तो कैसे खाओ, कंबाइंड होके खाओ, ठीक है। बोलना हो तो क्या करो, कंबाइंड होके बोलो। हाथ कुछ काम करना हो हाथ पैरों से, कंबाइंड होके करो। पैदल करना हो तो कंबाइंड होके करो, और घर ऑफिस में दुकान में कहीं कार्य करना हो तो कंबाइंड होके करो। बर्तन मांजने हो तो है? इसे शांति कहते हैं, ठीक है। ये है शांति। हाँ जी, क्या करें, कमेंट्री अपने अंदर कमेंट्री चलाओ। अब बाहर में अंत में जब विनाश होगा तो आज कमेंट्री तो चलाई नहीं। कमेंट्री कान में लगाओ, है ना, कमेंट्री चलेगी नहीं आपकी कमेंट्री ना। कमेंट्री यही कमेंट्री है ना, अपने आप को कमेंट्री देनी है, ठीक है। चलते और ये लोग, कई लोग क्या करते हैं, मैं देखा हमारे शांतिवन में भी करते हैं, वो कान में लगा लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, यहाँ इसके साथ लगाते ना कनेक्शन, और गीत गीत सुनते रहेंगे, बाबा की मुरली सुनते रहेंगे। बाबा की मुरली सुनने से ऐसे अंदर अंदर चलाओ ना, अंदर उभारो ना, खाते रहो नहीं, जो खाया उसको तो पचाओ, मतलब खाते रहेंगे उसको, मतलब पचाएंगे नहीं, जो खाया उसको निकालो बाहर, उसको फिर पचा के वापस डालो ना, नहीं क्या समझे। शायद गीत सुनो कान खराब, थोड़ी देर में हमारे पास आ जाते कान खराब लेके, कान से डॉक्टर सुनता नहीं है, कान में ऐसे ऐसे आवाज आ रही है, कितने घंटे सुनते हो भाई ये, कहते डॉक्टर सारा टाइम यही सुनता रहता हूं बस। तो कान को आराम दो ना, जरूरी है वो सुनो ना। गीत सुनने से योग लगता है क्या, गीत सुनने से योग लगाना है आपको, खुद चलते फिरते लगाना है, बिना साधन के लगाना है ना, लाल लाइट से नहीं लगाना है, हरी लाइट से नहीं लगाना है, आपको चलते फिरते बिना उसके लगाना है, किस हर समय लगाना है ना, ठीक है। तो शांति माना ये, और रूहानी प्यार माना विश्व में हर आत्मा को बिना शर्त के उसके हर पार्ट के साथ, या उसके हर पार्ट को देखते हुए महत्व देकर आदर से स्वीकार करना और ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहकर उसकी पालना करना। इसकी बहुत गहराई है ना, मतलब अंग्रेजी में कहूं तो अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर एवरीवन इन द यूनिवर्स, मतलब विश्व में हर आत्मा को बिना शर्त के, जैसे बाबा का प्यार हमारे लिए कैसा है, अनकंडीशनल है, चाहे मैं कैसा भी, मैं चाहे पुरुषार्थ करूं चाहे ना करूं, मुरली सुनूं चाहे ना सुनूं, बीके हूं चाहे नॉन बीके हूं, है ना, चाहे मैं रोज पूजा करूं, चाहे मैं आतंकवादी हूं, चाहे मैं डकैत हूं, स्मगलर हूं, सबके लिए बाबा का प्यार कैसा है। डाकू डाका डालने जाता है ना, तो वो भी पहले बाबा के पास जाता है ना, भले हनुमान के पास जाता है, बोले तो याद बाबा को पहुंचती वहीं तक, है ना, या शेरा वाली माता के पास, काली माता के पास जाता है, और जो ये होते हैं ना, जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं ना, जो आतंकवादी होते हैं, वो भी पहले भगवान के पास जाते हैं ना, भगवान आज मेरा काम ठीक हो जाए, है ना, तो मैं दिखाई देता ना वो बाबा को, वो लगता है कि हाँ ठीक है, जाओ जाओ बच्चे जाओ, है ना, तुम्हें जो कर्म करना है तुम्हारा फल तुमको मिलेगा, भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करता, करता है क्या, नहीं, तुम जैसा कर्म करो तुम्हें सफलता मिले, ठीक है, और तुम, भगवान रोकता नहीं है, रोकता है क्या, रोकता नहीं है ना। तो बेटा रूहानी प्यार, इतना प्यार, बाबा उसके हवा पानी बंद नहीं करता है, चल तू आतंकवादी तेरा हवा पानी बंद, ऐसा नहीं करता है ना। हम क्या करते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं, ये निकम्मा है, इसको कुछ नहीं देना चाहिए, तेरा हवा पानी, तेरा खाना पीना बंद, चल कमरे में बंद हो जाएगा, इसको नहीं करते। तो हमें ऐसा प्यार है ना, ऐसा प्यार, देखो रामायण या महाभारत देखो, उसमें सीता भी है, राम भी है, शूर्पणखा भी है, लक्ष्मण भी है, मेघनाथ भी है, कुंभकर्ण भी है, सभी है कि नहीं, और हमारे घर में भी सब कैसे कैसे होते हैं ना, है ना, पर यहां रूप बदल देते हैं, अभी देखो बेटा अभी तो हनुमान जैसा बन के बैठा है ना, थोड़ी देर में कुंभकर्ण बन जाएगा, है ना, थोड़ी देर में मेघनाथ बन जाएगा, है ना। बेटी देखो अभी तो सीता जैसी लग रही है, अभी सूरज में शूर्पणखा बन जाएगी ना, है ना। कैसे कैसे रूप रखते हैं ना, तो हमें उनके पार्ट को स्वीकार करना है ना, अनकंडीशनल, है ना, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस, है ना। हम रिएक्शन ना करें, हम टकराव पैदा ना करें, है ना, और फिर ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहकर उसकी पालना करें। ये नहीं कि ईश्वरीय मर्यादाओं के बाहर जाके पालना करें, नहीं, ये नहीं कि तुम गलत कर्म करो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं, भगवान साथ नहीं देता है उसका, फिर अच्छे कर्म में साथ देता है, शुभ भावना में साथ देता है, बुरी भावना में साथ नहीं देता है। ऐसा ही हमारा हरेक के साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये है रूहानी प्यार। जब ऐसा प्यार आप करेंगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, इस दुनिया के ऊपर पहुंच जाओगे। आप मन बुद्धि से कहां पहुंच जाओगे, कॉन्शियसनेस आपकी मन बुद्धि के ऊपर, मतलब दुनिया से ऊपर पहुंच जाएगी। अगर आप किसी चीज में फंस गए तो इस दुनिया में रह गए, फिर हम ईश्वर का प्यार अनुभव कर सकते हैं। फिर आप ऐसा, फिर आप जैसा ही आप सबको माफ कर देंगे, जजमेंटल नहीं होंगे, तो आप देखेंगे आप बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा फील होगा बाबा मुझे बुला रहा है। मैं तो ऐसे योग करता हूं, अब पता नहीं आप लोग कैसे योग करते हैं, मैं तो ऐसे ही बैठ के योग करता हूं, फिर देखता हूं ऐसे करता हूं, सबको एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो बाबा के पास पहुंच जाता हूं, बाबा की गोदी में पहुंच जाता हूं, बाबा प्यार करता है, जैसे बाबा के दिल में बच्चे, हाँ बस कैसे हो बच्चे, बाबा प्यार करेगा, ऐसे करेगा ना। आप जब तक किसी को माफ नहीं करेंगे तब तक आप अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति तब होगी जब सबको माफ कर देंगे, सबको स्वीकार कर लेंगे, किसी से पार्शियलिटी नहीं करेंगे, अपने और पुराने प्राय से पार्शियलिटी नहीं करेंगे, तब आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हो। अतीन्द्रिय सुख बाबा की गोद का अनुभव होगा, जैसे मैं बाबा के पास हूं, बाबा मेरे पास है, बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है, है ना, बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं, ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग है अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग। आप ऑलमाइटी अथॉरिटी के बिल्कुल नजदीक हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी आपकी सुनता है, आप ऑलमाइटी अथॉरिटी के दिल में हो, ऐसी फीलिंग, ये है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। और आनंद माना, आन माना बंधन, आत्मा कहते हैं ना, आत्मा पंछी है, शरीर पिंजरा है, इसमें कैद है, और आत्मा रूपी पंछी क्या करे, इस दुनिया और देह और देह की दुनिया के पार चली जाए, है ना, किसमें लीन हो जाए, किसमें लीन हो जाए, आत्मा परमात्मा के प्यार में लीन हो जाए, लवलीन हो जाए, संदेह की मुरली थी ना, बिंदी बिंदी में समा जाए, सब बातों को बिंदी लग जाए, और बाबा और आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाए ना, वो स्थिति ऐसी, ये आनंद की स्थिति है। और जिसने ये आनंद की अनुभूति कर ली, जिसने ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर ली, जिसने रूहानी प्यार की अनुभूति कर ली, अब उसको शक्ति मिल गई, शक्ति उसके अंदर आई, कौन सी शक्ति आई, सत्य को परखने की शक्ति आ गई। अब सत्य को परखने की शक्ति आ गई, परखने की शक्ति नहीं खाली, कौन सी शक्ति आई, सत्य को परखने की शक्ति आ गई, इसे कहते हैं विवेक, विजडम। अब सत्य को परखने की शक्ति आ गई तो सत्य निर्णय करने की शक्ति आ गई, इसे कहते हैं दिव्य बुद्धि। सत्य को सत्य निर्णय करने की शक्ति, सारी दुनिया अगेंस्ट, सारी दुनिया अपोजिट, मैं बस एक एक, सारी दुनिया खिलाफत करे कोई बात नहीं, मुझे सत्य निर्णय पे रहना है। जो सत्य मुझे निर्णय कर लिया, किस पे किया, क्यों आया सत्य निर्णय करने की शक्ति, क्योंकि मैंने बाबा से वो आनंद का अनुभव कर लिया, बाबा से वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर ली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। अतीन्द्रिय सुख माना संतोष, संतुष्टता, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। जब तक इच्छा है, कोई भी इच्छा है, हमें सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, ठीक है। जब तक जब संतुष्ट हो गए तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हुई, जब बाबा मिल गया तो संतुष्टता आ गई, बाबा मिल गया, भगवान मिल गया, है ना, और जब वो मिल गया तो इच्छाएं खत्म, और जब इच्छा खत्म, अब बाप के साथ दोनों मिलकर एक हो गए, है ना, लवलीन हो गए वो आनंद, और जब आनंद आ गया तो फिर क्या हुआ, फिर सत्य को प्रकट शक्ति आ गई, सत्य को प्रकट शक्ति आई तो सत्य निर्णय करने की शक्ति आ गई, अब सत्य निर्णय कर लिया तो विस्तार को सार बनाने की शक्ति आ गई, सारी बात को इतना भी बड़ा विस्तार था मेरा, क्या कर दिया, सार में समा दिया, अब कुछ भी हो जाए मुझे क्या करना है, अब सारी दुनिया मुझे छोड़ के जाना चाहे तो, घर वाले खिलाफ हो जाए तो कोई परवाह नहीं। जो था ना पहले माताओं ने कैसे किया, सारा परिवार अपोजिट, माता के दिल में मुझे बाबा के पास जाना है, परवाह नहीं है, है ना, मार खा के कैसे भी करके आगे पीछे हेराफेरी करके भी कैसे बाबा के पास पहुंच गए, नहीं। तो ये ऐसी शक्ति चाहिए। राय पहाड़ का राई बना दिया, क्या बना दिया, पहाड़ का राई बना दिया, और फिर समेटने की शक्ति, समेट के मन बुद्धि समेट के बाबा से लगा दी, बस अभी कुछ नहीं चाहिए, कोई कुछ मर्जी कर ले, है ना, समेटने की शक्ति आ गई, है ना, समेटने की शक्ति आ गई। अब नीचे वाले खींचते हैं, है ना, नीचे खींचता है ना, शरीर भी खींचता है, संबंधी भी खींचते हैं, तो फिर क्या करें, सहन करने की शक्ति चाहिए, सहन करने की शक्ति आ गई। जब सहन करने की शक्ति आ गई, फिर वो खूब तंग करते हैं, खूब परेशान करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, समाने की शक्ति आ गई, जो मर्जी कर लो, हम तो कुछ बोलेंगे भी नहीं, है ना, हम अखबार में एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, 10 लोगों को नहीं बताएंगे जाके, है ना, समाने की शक्ति आ गई। अब समा लिया तो अब और भी प्रॉब्लम आएंगी, खत्म नहीं होंगी, क्या होगा, फिर सामना करने की शक्ति आ गई, है ना। और जिसने राई का पहाड़ बना दिया, जिसने रॉन्ग निर्णय किया, रॉन्ग परखा, गलत को असत्य को सत्य परख लिया, असत्य निर्णय कर लिया, उसके लिए राई पहाड़ बन जाएगी, सार का विस्तार में जाए, और वो समेटेंगे जो बिखराव कर लेगा, मन बुद्धि इधर उधर बिखर जाएगी, वो सहन भी नहीं कर सकता, समा भी नहीं सकेगा, थोड़ी इतना सा सहन करेगा 10 लोगों को बताएगा, समा भी नहीं सकेगा और सामना भी नहीं कर पाएगा और सहयोग भी नहीं कर पाएगा। जिसने सत्य निर्णय कर लिया, सत्य परख लिया, सत्य निर्णय कर लिया, वो पहाड़ का राई बना दिया, समेट के मन बुद्धि को बाबा में लगा दिया, अब दुनिया वाले भले खींचे, कहां कितना मर्जी खींच लो, सहन कर लेंगे, समा लेंगे, कुछ भी कर लो, सामना कर लेंगे और फिर भी आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। तो ये सातों एनर्जी ऐसे भरती है, क्या करना पड़ता है, ऊपर से आती है कि बनानी पड़ती है ना। तो ये राजयोग, ये है राजयोग, है ना। दो दो घंटे भी आप करते रहो बैठ के ना, ये ऊपर से आया, ऊपर से आया, कुछ भी नहीं, 2 घंटे बाद देखो तो कुछ नहीं आया पीने का, ठीक है, खाली बैठे रहोगे, है ना, खाली खाली बैठे रहोगे, खाली खाली खाली, है ना, ऐसे आता नहीं है, बनाना पड़ता है ऊपर से, अरे आई रोटी, आई रोटी, आई रोटी, आई रोटी, रोटी आई क्या, रोटी बनाओ ना बैठ के, है ना, आटा भिगो, फिर बेलो, फिर बनेगी ना, ऐसे तो रोटी आ जाएगी क्या, दूध आया, दूध आया, दूध आया, दूध आएगा क्या, ऐसे नहीं आएगा, बनाना पड़ेगा। हाँ तो मासी का कसने मतलब हर कर्म करते आपको बनाना पड़ता है, अटेंशन रखनी पड़ती है, राइट। तो मैंने कहा आज मैं ये राज्य अधिकारी सुबह, माने ये आत्मा शक्तिशाली होगी ना, सातों गुण आ गए, अब क्या हुआ, बुद्धि, अब क्या हुआ, आगे ना बुद्धि में, ये देखो अभी एक, मैं यहां एक बात, बहुत सुंदर बात बताता हूं आपको, दिल एक आत्मा का एक दिल है ना, आत्मा की दो बातें, बुद्धि मन और संस्कार ना, बुद्धि में 4 बातें हैं, एक तो दिल है, कॉन्शियसनेस है, एक कॉन्शियसनेस में 6 एनर्जी आ गई ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, ये आ गई तो अब जो है हमारी निर्णय शक्ति, विजडम, विवेक कैसा हो गया, ईश्वर जैसा हो गया, सत्य को प्रतिनिधि शक्ति ईश्वर जैसे हो, जो हमारी निर्णय शक्ति थी वो कैसी हो गई, दिव्य हो गई, दिव्य माना डिवाइन, सत्यता के ऊपर आधारित हो गई। अब मेरा चित्त, सबकॉन्शियस माइंड मेरा शांत हो गया, एकाग्र हो गया, आनंदमय हो गया, जो दिल में वो चित्त में, दिल में सत्य है तो चित्त में आनंद स्वरूप है, चित्त में शांति भी है, रूहानी प्यार भी है, अतिंद्रिय सुख भी, आनंद भी है, है ना। अब देखो जब भी शब्द बोलो आनंद तो कहां गए, मन बुद्धि कहां पहुंच गए, कहां पहुंचे, बाबा से लवलीन हो गए। शांति बोला था, क्या हुआ, क्या हुआ, शांति माना वर्तमान में बाबा से कंबाइंड होके सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्यार माना सब कुछ स्वीकार कर लिया, है ना, एक्सेप्ट कर लिया। अतिंद्र सुख माना बाबा की गोद में पहुंच गए, बाबा मेरे मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, बस बाबा की छत्रछाया। आनंद माना बाबा में समा गए। और सर्वशक्तियां माना, एक एक बात को समझो, मतलब शब्द समझते ही, समझ आते ही योग लग जाएगा, शब्द का अर्थ समझते ही योग लग जाएगा। नहीं लगा, लग रहा, नहीं लग रहा अभी, है ना, ऑटोमेटिक लगेगा, सीक्वेंस में चलते जाओ तो अतिंद्र, तो आपकी जैसे चित्त में आनंद आया ना, सच्चित आनंद स्वरूप, मतलब दिल में सत्य है तो चित्त आनंद स्वरूप हो गया, और चित्त के आधार पे ही हमारा क्या होता है, चित्त के आधार पे ही हमारी मेमोरीज खुलती हैं। ये जो फाइल्स है ना हमारी मेमोरीज की, स्मृतियों की फाइल, संस्कारों की फाइल, उसके आधार पे खुलती है। जब मेरे दिल में असत्य है, मैं डॉक्टर हूं है ना, मैं इतना बड़ा अनुभवी, मैं समझदार हूं है ना, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं इंचार्ज हूं, तो क्या होगा? असत्य आ गया, असत्य आया, विवेक क्या हो गया, प्रज्ञा शक्ति कंफ्यूज हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो गई, चित्त चंचल हो गया, अशांत हो गया, बेचैन हो गया, तो स्मृतियां कैसे खुल गई, संस्कार कैसे आ गए, आसुरी संस्कार सामने आ गए, चेहरा बदल जाएगा, क्रोध वाला चेहरा हो जाएगा ना, है ना, लगाव वाला चेहरा, अहंकार वाला चेहरा हो जाएगा ना, स्मृति वो आ जाएगी, वृत्ति दैहिक वृत्ति आ जाएगी, ईगो वाली आ जाएगी, भावना खराब हो जाएगी, संकल्प बहुत फास्ट चलेंगे। इसकी बजाय दिल में सत्य, चित्त शांत, अपने आप आनंदमय, और जैसे ही आनंदमय होगा तो संपूर्ण ब्राह्मण, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति आ जाएगी। पिछले कल्प वाली थे ना, हम ही आत्मा तो थे, वो स्मृति अंदर है, इमर्ज हो जाएंगी, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति, ब्राह्मण माना बेहद में, इसकी बुद्धि और मन बेहद में हो, हद बेहद क्या है, आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा, अपने आप मेरी बुद्धि में वो संस्कार बेहद वाले आ जाएंगे, अपने आप रियलाइज होगा मैं आत्मा हूं, बाबा मेरे साथ है, एक एक संबंध की अनुभूति ड्रामा। तो ब्राह्मण फरिश्ता, फरिश्ता माना 100% पॉजिटिव मन, सत्य मन जिसमें स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प 100% पॉजिटिव, वो स्मृतियां जागृत हो जाएंगी, देह से ऊपर है ना, लाइट की बॉडी, लाइट की बॉडी माना 100% पॉजिटिव, पवित्र मन पवित्र बुद्धि, ऐसी स्मृति जागृत हो जाएगी, और देवता दैवी गुणों से भरपूर है ना, देने वाला, तो वो स्मृति जागृत हो जाएगी। जैसी स्मृति जागृत होगी वृत्ति रूहानी हो जाएगी, रूहानी वृत्ति से रूहानी वायुमंडल बन जाएगा, और जैसे ही रूहानी वायुमंडल बनेगा हमारी भावनाएं शुभ, सबके प्रति शुभ भावना हो जाएगी, सारे विश्व में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, किसी एक के प्रति भी थोड़ी भी जैसी दूसरी भावना नहीं, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ भावना से शुभ वाइब्रेशंस दूर दूर तक जाने लगेंगे, दूर दूर तक जाने लगेंगे, और फिर वाइब्रेशंस जाने लगेंगे दूर दूर तक हर आत्मा तक। देखो वाइब्रेशन किसके बीच में बहते हैं, संबंधों के बीच में बहते हैं, ऐसे अमेरिका वालों से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो अमेरिकन है ना, मेरा कोई सऊदी अरब से कोई संबंध नहीं है, वो इस्लाम वाले धर्म वाले हैं, किंतु आत्मा के लेवल पे वो सब क्या है, मेरे भाई हैं, अमेरिका वाले भी मेरे भाई हैं, लंदन वाले भी मेरे भाई हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले मेरे भाई हैं, कोई भी देश वाला कोई भी धर्म जाति का वो मेरा भाई है। अब ऐसे अगर मैं देखूं तो मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बच्चे है, मेरे माँ है, मेरे बाप है, और आत्मा के लेवल पे सब मेरे क्या है, मेरा बच्चा नहीं है क्या है, भाई है, मेरी पत्नी नहीं है क्या है, आत्मा रूप में भाई है ना, मेरी पिताजी नहीं है क्या, आत्मा रूप में भाई, माता नहीं है, माँ नहीं क्या कहेंगे, आत्मा रूप में भाई, तो मेरी वाइब्रेशन को कैच करने लगेंगे। मैं माँ देख के दूंगा ना तो नहीं पहुंचेगा, और जैसे ही मैं माँ आत्मा देख के दूंगा ना सबको तो पहुंच जाएगा। मैं एक आपको अनुभव सुनाता हूँ शुरू शुरू का, लास्ट में अभी क्लास पूरी हो गई वैसे तो मैं सुनाता हूँ। तो मैंने क्या था, मेरे को पेशेंट फोन करते ना बॉम्बे से, कोई चेन्नई से, कोई कहीं से, कोई हैदराबाद से, मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, दिल वाले ही होते हैं ना, यहाँ अटेंड करके गए, कोई गलत खा लेते हैं, कई बार गलत कुछ हो ना चाहे भी, कई बार अचानक कुछ खान पान में कहो या कुछ बोलचाल में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टेंशन हो जाती है, तकलीफ हो रही है। तो मुझे कहते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर मुझे ऐसे ऐसा हो रहा है, तो मैं कहता हूँ अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठो अभी, आप अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो, मैं भी योग में बैठता हूँ, अभी आप ठीक हो जाओगे। तो हमारी दवाई तो यही है ABCD ना, हमारी दवाई हम लोग सभी टेट खाने को नहीं बोलते, हम कहते हैं ABCD करो, ठीक है ABCD करो, हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा ना, और रियली में ठीक हो जाता है, तो हम ऐसे करते हैं। तो फिर मैंने कहा, मैं भी बाबा को बैठा, मैंने कहा अच्छा अभी कैसा लग रहा, 5 मिनट बाद दोबारा फोन आया, तो मैंने कहा अभी कैसा लग रहा है, कहते कुछ नहीं हुआ सर अभी दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा बाबा को, मैंने कहा बाबा ये क्या सुदर्द ठीक नहीं हो रहा, आपने तो कहा था ये तो बाबा शब्द तो हर रोग की दवा है, आपको याद होगा चंद्रकला बेन एक मुरली में आया था ना, बाबा शब्द हर रोग की दवा, आज का वरदान भी था, मेरा बाबा को तो योग शक्तिशाली हो जाएगा। तो मैंने कहा बाबा तो आपने कहा था ऐसे, मैं तो किया उसको तो फायदा नहीं हुआ, बाबा कहता बच्चे वो गड्ढे में गड्ढा होता ना, तू गड्ढे में पानी डालेगा, गड्ढे में पानी डालोगे तो सारा पानी तो बाहर चला जाएगा। तो बरसात को गड्ढों के लिए होती है क्या? बरसात जनरल होती, गड्ढे सारे भर जाते हैं ना। तुम उसको याद करके, तुम मेरे को याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें तो वही याद आ रहा है, मेरे से तो लग ही नहीं रहा तुम्हारा। तुम मेरे साथ आके बैठ जाओ, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। तो कभी भी किसको सकाश पर्सनल देने की कोशिश मत करो, है ना। पर्सनली सकाश दोगे तो उसको नहीं पहुंचेगा। ये मेरा बहुत अनुभव, मतलब आपको एक एक अनुभव बताया, किंतु मेरे को तो बहुत अनुभव है कि किसी को पर्सनल सकाश मत दो। आप जब बाबा के गोद में जाके बैठ जाओ ना, आप सबको अपने आप ही पहुंच जाएगा। और आपके अंदर संकल्प है, गड्ढा है, ये गड्ढे में अपने आप पहुंच जाएगा, गड्ढा अपने आप भरेगा, भरने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से क्या बारिश बरसात होती है, बादल, अरे गड्ढा है नीचे इसको भर दूं, ऐसे होती है, है ना। सारी जगह पानी भर जाता है ना। तो हमें भी बाबा के समान ना ऊपर बैठ जाओ और वहां जाके अपने आप सबको सकाश पहुंचेगा। क्योंकि अगर किसी का संकल्प लेके बैठोगे तो उसकी याद रह जाएगी, बाबा तक पहुंचेगी नहीं आपकी याद, तो आपको बाबा से वो लगेगा नहीं प्रॉपरली, पावरफुल नहीं लगेगा। सिर्फ मेरा बाबा करो, है ना, मेरा बाबा, बाकी कोई नहीं। अनेक मेरे को इसमें परिवर्तन कर दो, मेरा बाबा में परिवर्तन कर दो, योग शक्तिशाली हो जाएगा, इतना आनंद आएगा। तो ऐसे आप अपना अभ्यास करना, तो ऐसे अपने आप को सातों गुण भर गए तो देखो बुद्धि भी शक्तिशाली हो गई, बुद्धि भी वश में आ गई, बुद्धि को वजन मिला ना, सैलरी मिली। बुद्धि को सैलरी मिली नहीं मिली? अगर आपकी सैलरी आप देते हो, आपका एक सैलरी, एक आदमी की सैलरी है 10,000, आप उसको 500 रुपए दे दो महीने के, तो क्या करेगा बेचारा? उसका काम ही नहीं चलता है, वो किसी घर जाएगा, उसको वहां से 5,000 मिल गए, तो आपकी सुनेगा कि 5,000 वाले की सुनेगा? 5,000 वाले की सुनेगा ना। तो आप अपने अंदर इतनी भरपूर रखो, अपने आत्मा से बाबा से कंबाइन रखे कि बुद्धि भरपूर रहे सातों गुणों से ना, और फिर मन भी, स्मृति, वृत्ति, भावना, संकल्प, चार चीजें होती है ना उसमें, टीम, हमें टीम कहते हैं, पॉजिटिव टीम हो गई। और जब ये भर गई, संस्कार भी पॉजिटिव हो गए, तो तीनों आपके वश में आ गई, पांचों कर्मेंद्रियां, आंख नाक कान में भी क्या आ गई, समझ आ गई, पवित्रता आ गई, शांति आ गई, प्रेम आ गया, सुख आ गया, आनंद शक्ति आ गई, नाक में भी आ गई, मुंह में भी आ गई, कानों में भी चली गई, है ना। तो ये भी कंट्रोल में आ गई, अंगों में भी चली गई। हार्ट को क्या चाहिए? प्यार। कौन सा वाला प्यार? रूहानी प्यार चाहिए। लंग्स को चाहिए शांति, चाहिए शांति, लंग्स को मिल गई। लिप, पेट को क्या चाहिए? खुशी चाहिए, खुशी पेट में चली गई। हार्मोन्स को चाहिए क्या? चाहिए आनंद, वो ठीक हो गए। हड्डियों को शक्तियां चाहिए, हड्डियां भी ठीक हो गई, सारे दर्द गायब हो गए। ऐसे हमारे जो ना सारे हमारे ये हैं सब राज्य अधिकारी, ठीक है। भले शरीर हमारी कटारा गाड़ी है, कटारा गाड़ी पुरानी है ना, कटारा है, कूटने ये भी पंचर हो रखे हैं, कमर ये एक्सल भी टूटा पड़ा है, नहीं है ना, है ना, हार्ट मोटर भी आवाज करती है ना, करती नहीं करती, पेट भी गुड़गुड़ करता है ना, सब कुछ गड़बड़ है, फिर भी अच्छा ड्राइवर क्या करता है, कटारा ड्राइवर गाड़ी को भी चला लेता है, और एक अनाड़ी ड्राइवर क्या करता है, नई गाड़ी को भी एक मिनट में कटारा बना देता है, ठीक है। तो बाबा हमें क्या बना रहे हैं? अच्छा ड्राइवर बना रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा स्वराज्य अधिकारी माना अच्छा ड्राइवर, ठीक है। आत्मा पे सातों एनर्जी भर गई, इससे फिर आप देखो सब कुछ ठीक चलेगा। अभी हमें ये नहीं कंप्लेन नहीं करेंगे, मुझको ये नहीं चलता, मेरा ये नहीं चलता, मेरा ये सब चलता है। आप अच्छे बाबा से शक्ति लो, चलाओ, ठीक है, ऐसी शक्तिशाली बनकर चलाओ। इसके लिए अमृत वाला पावरफुल करो, मुरली सारा दिन, मुरली सुबह क्लास में जाकर सुनो, सारे काम छोड़ के सुनो, देखो कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, धरती इधर से उधर हो जाए। अगर भूकंप भी आ रहा हो तो मकानों टूटे मकानों के ऊपर से जाओ, है ना। अगर अमृत वेला करना है तो भले आपका मकान टूट जाए, टूटे मकान के ऊपर करो, पर जरूर करो, है ना। अमृत वेला करो, मुरली कभी मिस नहीं करो, और सारा दिन मुरली पे अटेंशन रखो, मनन चिंतन मंथन सिमरण करो, और सोने के पहले सच्चा सच्चा पोता मेल, जिसे कहते हैं वेंटिलेशन, लेटर लिखो बाबा को क्या क्या गलती हुई, फिर चार्ट भरो, फिर मुरली पढ़ के बाबा को याद करके सो जाओ, 9:30 तक सो जाओ, और फिर सुबह सुबह उठ के मैं फिर सारा दिन ये चार बातें फिर अगले दिन ऐसी दिनचर्या चलाओ। और पवित्रता, जितनी पवित्रता बढ़ाओगे, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, लगाव झुकाव नहीं, टकराव नहीं, प्रभाव नहीं, क्या क्यों कैसे नहीं, ऐसी पवित्रता, तो आपका बाबा से अच्छा अमृत वेला होगा, मुरली अच्छी रहेगी, अटेंशन रहेगा, सच्चाई से लेटर लिख पाओगे, शुद्ध सात्विक भोजन, अंकुरित दलिया, सब्जी, रोटी, फल, चावल, दूध, ये सात्विक भोजन है, ऐसा सात्विक भोजन खाओ तो तुम्हारा योग लगेगा, बाबा से करंट आएगी, नहीं तो करंट नहीं आएगी। अगर रासिक भोजन खाओगे, पराठा पकौड़ा समोसा मिठाइयां, तो आलस आएगा, भले योग लगेगा नहीं, नींद आएगी। और तामसिक माना एक कोल्ड ड्रिंक्स पीना, चाय कॉफी पीना, और क्या होता है ये अचार खाना, लहसुन प्याज खाना, ये सब चीजें साथ, साथ ये है तामसिक भोजन, उत्तेजना पैदा होगी, योग लगेगा नहीं, ठीक है। और सत्संग, बाबा और मुरली के अलावा बाकी टीवी, अखबार, मोबाइल छोड़ दो, व्हाट्सएप लेना छोड़ दो, फेसबुक पे जाना छोड़ दो, ठीक है। अगर 108 की माला में आना है तो, है ना, या 16,000 की माला में आना है तो, बाबा को सिर्फ बाबा से रखो, अगर कोई ईमेल है ना बाबा से रख लो, व्हाट्सएप बाबा का है तो बाबा से रख लो, ठीक है। बाबा से कोई फोन मोबाइल ऐसा आता है बाबा से करने का तो वो भले रख लो, ठीक है। क्या समझे, बाबा का हॉटलाइन नंबर है 000, जब चाहे जहां चाहे जितना मर्जी बात करो, है ना, जितना चार्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, है ना, फ्री चार्ज है ना, तो ये यूज करो। और दैवी गुणों की धारणा, सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, धैर्यता, गंभीरता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, दृढ़ता, ऐसे बहुत सारे 56 है वैसे तो, उनकी धारणा करो। कभी भी गुस्सा नहीं करो, कोई कितना मर्जी आप कान खींचे, कुछ भी करे, बाल खींचे, कुछ भी करे, मतलब कुछ भी इतना भी तंग करे, आप कभी गुस्सा नहीं करो, कभी चिंता मत करो, हमेशा मस्त रहो, निश्चय रखो, विश्वास रखो, निश्चिंत रहो। ओम चित, चित एक, चित एक, चित एक आस्पेक्ट है बुद्धि का, चित बुद्धि का आस्पेक्ट है, उसमें दिल आता है, फिर विवेक आता है, फिर जजमेंट पावर, निर्णय शक्ति आती है, फिर चित्त आता है। अगर मेरे दिल में असत्य है, दिल में असत्य है, तो विवेक कंफ्यूज हो जाता है और निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाती है, और वो फाइल कहां जाती है, वो चित्त में चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड में एक बार सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब हो गया तो फिर मेरी मन, फिर मन में जो पहली बारी स्मृति होती है, वो स्मृति की फाइलें नेगेटिव वाली खुल जाती है, ठीक है, उससे फिर वृत्ति खराब हो जाती है, उससे भावना खराब, उससे संकल्प खराब, ये है सीक्वेंस। अगर मेरे दिल में सत्य है तो मेरा विवेक ईश्वर जैसा हो जाता है, जजमेंट पावर दिव्य हो जाती है, और चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय हो जाता है, और उससे ऑटोमेटिक मेरी फाइलें, संस्कारों की फाइलें, स्मृतियों की फाइलें, वो पावन सतो प्रधान वाली फाइलें होती है, ब्राह्मण फरिश्ता देवता वाली, ठीक है। उससे वृत्ति अपने आप आत्मिक हो जाती है, भावना शुभ हो जाती है, संकल्प शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली हो जाते हैं, और परमात्मा फिर मेरे, परमात्मा से जो शक्ति आती है वो सीधी मेरे बॉडी के अंगों में जाती है, कर्मेंद्रिय में जाती है, पांचों कर्मेंद्रिय में, आठों अंगों में जाती है, जिससे मेरा शरीर और कर्मेंद्रियां मेरी ठीक काम करती है, ठीक है, समझ में आ गई। ओम शांति।
सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, ओ बाबा ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, तेरे है हर पल सुनहरा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा, ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, ओ बाबा।